الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. كهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ایمان لائی ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے. توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا. اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گی، اور اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گی. یا اللہ، تو ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنی سچی بندیوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضا مندی کی اور اپنے پاک رسول کی تابع داری کی. بس یہ ہو گئی بیت. اب جو باتیں کہوں ان کو دھیان سے سنو. بیت ہونے کا خلاصہ اور مطلب دو چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے میں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنے میں، آج تک ہم سے جو غفلت اور کوتاہی ہوئی اس سے توبہ، اور آئندہ ایسی غفلت اور کوتاہی نہیں ہوگی، اس کا عہد و پیمان اور وعدہ. گویا یہ بیت آپ کی پچھلی یعنی گزری ہوئی زندگی کے حق میں توبہ ہے، اور آنے والی زندگی کے حق میں ایک طرح کا معاہدہ، وعدہ اور ایگریمنٹ ہے. توبہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں. آدمی گناہ کو چھوڑ دے، گناہ پر باقی رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتی. نمبر دو، अब तक जो गुनाह हुए उस पर दिल में पछतावा हो कि हाय किस बड़ी जात की मैंने नाफरमानी की। और नंबर 3, आइंदा गुनाह न करने का पक्का इरादा हो। और अगर किसी गुनाह की वजह से अल्लाह ताला या बंदों में से किसी का कोई हक जाए और बर्बाद हुआ है तो वो भी अदा कर दिया जाए। अल्लाह ताला के हुकूक में से एक तो है नमाज। आदमी जब से बालिग होता है नमाज उस पर फ़र्ज हो जाती है। औरतों के लिए जब माहवारी शुरू हो या 15 साल की उम्र पूरी हो तो वो बालिग कहलाती हैं। आप भी जब से बालिग हुई आप पर नमाज फ़र्ज हो चुकी। अब अगर उस दिन से लेकर आज तक तमाम नमाजें पाबंदी से पढ़ती चली आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या छूटी थी और कज़ा कर ली तो भी बहुत अच्छा, और अगर छूटी थी और अब तक कज़ा करने की नौबत नहीं आई तो यहाँ से उठकर जाने के बाद तन्हाई में बैठो, बैठकर सोचो, गौर करो, अंदाज़ा लगाओ कि आज तक हमारी कितनी नमाजें छूटी। अभी आपको बैत हो चुकने के बाद अंग्रेज़ी में एक बुकलेट देंगे, उसमें सोचने, गौर करने, अंदाज़ा लगाने का तरीका भी बताया है, वो देख लेना और उसके मुताबिक फिर बैठ करके सोचना कि आज तक हमारी कितनी नमाजें छूटी, और सोच कर जो तय करो उसको कागज़ पर या डायरी में नोट कर लो और उसके मुताबिक आज से ही उसकी कज़ा करना शुरू कर दो। अलबत्ता औरतों के लिए माहवारी के दिनों में जो नमाज आती है वो न पढ़नी है न बाद में उसकी कज़ा करनी है, वो मैं आगे बताऊंगा। इसी तरह रमज़ान के रोज़े, बालिग होने के बाद जितने भी रमज़ान के महीने आए उनके रोज़े भी आप पर फ़र्ज हो चुके, वो भी अगर बराबर पाबंदी से रखती चली आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या छूटे थे और कज़ा कर ली तो भी बहुत अच्छा, और अगर छूटे हैं और अब तक कज़ा करने की नौबत नहीं आई तो यहाँ से उठकर जाने के बाद उसके मुतालिक भी सोचो, गौर करो, अंदाज़ा लगाओ कि आज तक हमारे रमज़ान के कितने रोज़े छूटे। उसका भी सोचने और अंदाज़ा लगाने का तरीक़ा उसी बुकलेट में जो अभी आपको दी जाएगी उसमें है, उसके मुताबिक सोच कर जो तय करो उसको डायरी में या कागज़ में नोट कर लो और उसके मुताबिक उसकी भी कज़ा करना शुरू कर दो। अल्लाह ताला ने मालो दौलत दी जिसकी वजह से ज़कात फ़र्ज हुई, क़ुरबानी वाजिब हुई, सदक़तुल फ़ितर वाजिब हुआ, और ये सब चीज़ें भी देती चली आ रही हैं। अब देखिए आम तौर पर औरतों के पास जेवरात होते हैं, ख़ास करके सोने का जेवर, और आजकल सोने का भाव भी ज़्यादा है और साथ में कुछ पैसे भी होते हैं आपके पास। यहाँ का सिक्का क्या है, कल रेंट रेंट भी होंगे आपके साथ। तो अब जब वो सोने का जेवर भी है और साथ में रेंट भी हैं तो बाज़ार की कीमत जब लगाते हैं तो अगर वो चांदी के हिसाब जितनी होती है 612 ग्राम और जो है उसके ऊपर कुछ पॉइंट चांदी है उतनी अगर हो जाती है तो ज़कात फ़र्ज हो जाती है। तो आम तौर पर औरतों के पास इतना जेवर होता ही है। तो बहरहाल आप पर ज़कात फ़र्ज हुई और वो भी अगर अदा करती चली आ रही हैं, क़ुरबानी भी अदा करती चली आ रही हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो किसी मुफ्ती से पूछ लेना कि इतना जेवर, इतना पैसा इतने सालों से मेरे पास है और मैंने ज़कात दी नहीं, क़ुरबानी की नहीं, मैं क्या करूँ। वो मुफ्ती जो बतावे वो कर लेना। हज अगर फ़र्ज हो चुका है और नहीं किया है तो वो भी कर लो। ये तो अल्लाह ताला के हुकूक हुए। बंदों के हक दो तरह के हैं, जानी और माली। जानी का मतलब ये है कि हमने किसी को मारा, पीटा, गालियाँ दी, बुरा भला कहा, तोहमत लगाई, सताया, गीबत की, हमारी ज़ात से किसी को जिस्मानी या जहनी तकलीफ पहुँची। जिसको भी तकलीफ़ पहुँची जब तक कि वो खुद माफ़ न करे वहाँ तक माफ़ होता नहीं है। हम अल्लाह ताला के सामने कितने ही रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह ताला से अर्ज करें, अल्लाह मैंने तो तेरे बंदों को बहुत सताया है, मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी जवाब मिल चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमको बतला दिया कि अल्लाह ताला बंदों का हक़ माफ़ नहीं करते, वो तो बंदों से ही माफ़ करवाना पड़ता है। इसलिए आज तक जितने लोगों के साथ आपका मिलना जुलना रहा, जिसमें माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, औरतें मर्द और आपकी सहेलियाँ जिनके साथ आपका उठना बैठना, या मोहल्ले बस्ती की वो औरतें जिनके साथ आपके ताल्लुकात रहे, उन तमाम के नामों की एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट बनाकर हर एक के मुतालिक सोचो कि भाई किस किस का क्या क्या जानी या माली हक मेरे ऊपर है। मसलन कि भाई मैंने आज तक अपने अब्बा को कितनी तकलीफ़ें पहुंचाई और कितना सताया, कैसा दिल दुखाया, जो याद आवे लिखो, अम्मी को, भाइयों को, बहनों को, शौहर को और अपनी सहेलियों को, पड़ोसी औरतों को और औरतों से जिस तरह जिसके साथ जो चीज़ मामला पेश आया हो और आज तक उसकी माफ़ी नहीं मांगी है तो नोट करो। इसी तरह किसी का कोई पैसा लिया था कर्ज़ के तौर पर, वापस नहीं किया, कोई चीज़ ली थी वापस नहीं की, तो वो भी नोट करो। और ये सब लिस्ट जब तैयार हो जाए तो हर एक से मिल करके जो जानी हुकूक है उसकी माफ़ी मांगो कि मैंने आपको गाली दी थी, आपको सताया था, आपकी गीबत की थी, आपकी तो आप पर तोहमत लगाई थी, अल्लाह वास्ते मुझे माफ़ कर दो। और माली हक़ जो है कि भाई आपका ये बाकी रहता है ले लो, और जो मैंने लेट किया उसको माफ़ कर दो। ये सब आप कर लोगी तो आपकी ये तोबा अभी जो की है वो मुकम्मल होगी, वरना खाली ज़बानी है, वरना हकीकी तोबा तो वही। आइंदा के लिए आपको पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करना है। वैसे औरतों के लिए माहवारी के दिनों में नमाज नहीं है, अलबत्ता हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है कि नमाज तो उन दिनों में आप पर फ़र्ज नहीं है, लेकिन आम तौर पर औरतें माहवारी के दिनों में नमाज न होने की वजह से मुकम्मल गफलत बरतती हैं, तो बुज़ुर्गों ने वो नमाज की आदत बाकी रहे इसलिए ये लिखा है कि अगरचे नमाज फ़र्ज नहीं है लेकिन जब भी नमाज का वक्त आवे तो बाकायदा जैसे नमाज के लिए वज़ू करते थे इस तरह वज़ू करो और मुसल्ला बिछा कर, नमाज तो नहीं पढ़नी है लेकिन क़िबला रू बैठ कर रोज़ाना जितनी देर उन नमाज में लगती थी 5-10 मिनट, उतनी देर बैठ कर तस्बीह पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, पहला कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, ये पढ़ो हर नमाज के मौके पर, ताकि ये नमाज की जो आदत है ना वो बाकी रहे। यह आम तौर पर औरतों में नमाज के अंदर जो गफलत होती है, सुस्ती होती है, उसकी बड़ी वजह यही है कि माहवारी के दिनों में वो यूँ समझती हैं नमाज तो है नहीं, इसलिए वो मुकम्मल गफलत बरतती हैं। नमाज के अवकात के अंदर भी उनको याद नहीं रहता, वो याद वह नमाज है नहीं, इसलिए कोई हरफी गुना भी नहीं है। लेकिन अब जब इस औरत के 5, 6, 7, 8 दिन इस तरह गुजरे हों और फिर दोबारा जब माहवारी ख़त्म होकर के पाक होगी तो वो कहाँ उसकी आदत बाकी रहेगी। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने उस आदत को बाकी रखने के लिए ये तरतीब बताई है। उस तरतीब पर अगर आप अमल करोगी तो उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि भले नमाज तो नहीं पढ़ेगी लेकिन इस बहाने से तस्बीह, दुरूद, दुआ और इस्तिग़फ़ार वगैरह पढ़ने का मौका मिलेगा, अल्लाह ताला की याद होगी, हमारे ज़िंदगी में नूरानियत आएगी। दोबारा इसका अहतमाम करो। और रमज़ान का महीना आवे तो उसके रोज़े रखो। रमज़ान में भी अगर माहवारी आई है तो रोज़े नहीं रखेंगी लेकिन बाद में उसकी कज़ा करनी है। नमाज में और रोज़े में फ़र्क इतना ही है कि माहवारी के दिनों में जो नमाज छूटी है उसकी कज़ा नहीं है, जबकि रोज़े में माहवारी के दिनों में रोज़ा नहीं रखेंगे रमज़ान का, लेकिन बाद में उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास ज़कात जितना ज़ेवर पैसा वगैरह है जैसा अभी बतलाया, तो ज़कात भी अदा करो, क़ुरबानी भी दो, सदक़तुल फ़ितर भी अदा करो, हज फ़र्ज़ हो चुका है तो वो भी करो। ये तो अल्लाह के हुकूक है, बंदों के हुकूक में जो है आपको आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ज़ात से किसी को जिस्मानी ज़हनी तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। आम तौर पर हम लोगों को अपनी ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाते हैं, ज़्यादा बुरा भला कहते हैं, उनकी गीबत करते हैं, उन पर तोहमत लगाते हैं, इससे अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये बंदों के हुकूक जो है ना कल को क़यामत में आदमी के लिए वबाल बन जाते हैं, इसलिए अपने आप को कोशिश करो कि हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और क़ुरान पाक की तिलावत आप में अगर कोई हाफिज़ है तो रोज़ाना 3 पारे हाफिज नहीं नाजरा पढ़ते आता है, रोज़ाना 1 पारे की तिलावत, और नाजरा भी नहीं आता तो तय कर लो हम नाजरा पढ़ना सीखेंगी। अपने घर में अपने शौहर, अपने भाई, अपनी औलाद जो पढ़ी लिखी हुई है उनसे सीख लो, और तस्बीहात में 3रा कलमा, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार, ये तीनों 100-100 मरतबा सुबह और 100-100 मरतबा शाम को। सुबह की तस्बीह उठो जब से लेकर दिन के 11 बजे तक पूरी कर सकते हो, लेकिन फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज निकलने तक का वक्त बड़ा बरकत वाला है, उस वक्त अगर पढ़ लो तो बहुत अच्छा। शाम की तस्बीह असर से लेकर सोने तक पूरी कर सकते हो, लेकिन असर से लेकर मगरिब तक का ये जो वक्त है वो बड़ा बरकत वाला है, उसमें पढ़ लो तो बहुत अच्छा। ये तस्बीह एक जगह बैठकर भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बहरहाल उसको पूरा करना है। उसके अलावा 40 दुरूद छपे हुए हैं, 40 दुरूद के नाम से, वो रोज़ाना 1 मरतबा। दुआ की एक किताब है, उसका नाम है अलहिज़्बुल आज़म, ये जो है ना गुजराती तर्जमे वाली, उर्दू तर्जमे वाली, अंग्रेज़ी तर्जमे वाली, वो यहीं आपके अफ्रीका में मिलती है, वो आप ले लीजिए। जो भी ज़बान आवे तो, एक तो अरबी पढ़ते अगर आता है तो रोज़ाना वो 7 दिन का अलग अलग उसका वजीफ़ा है, पहली मंजिल शनिचर, दूसरी मंजिल इतवार, तीसरी मंजिल पीर, इस तरह। तो जो अरबी दुआएँ हैं बाकायदा दुआ के तौर पर साथ में तर्जमा भी देख लो, जो भी ज़बान आती है उर्दू गुजराती अंग्रेज़ी, ताकि पता चले कि क्या दुआ मांगी जा रही है, उसकी वजह से जी भी लगेगा। और साथ ही साथ इन दुआओं में से कुछ दुआओं को याद कर लो, ताकि जब बड़ी रातें आवें, जैसे शब बारात है, रमज़ान की रातें हैं, या अल्लाह ताला अगर आपको हज या उम्रे में ले जाए तो वहाँ जो बरकत वाली जगह हैं वहाँ आपको दुआ मांगने में सहूलत रहेगी। बहुत से लोग सब कुछ करते हैं, दुआ मांगना नहीं सीखते। दुआ मांगना का तरीक़ा हुजूर ने जो बताया है, इन दुआओं को अगर आप याद कर लेंगी, अगर अरबी में याद ना हो तो कोई हरज नहीं, आपको गुजराती आती है तो गुजराती में, उर्दू आती है तो उर्दू में, अंग्रेज़ी आती है तो अंग्रेज़ी में उस दुआ का तर्जमा याद कर लो और अल्लाह से मांगो और इसकी आदत डालो रोज़ाना 10। ये तो जो ये किताब की दुआएं वो तो कर पढ़नी है, उसके अलावा भी रोज़ाना 10-15 मिनट अलग से आपको दुआएं मांगनी है, उसमें अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी सहेलियों के लिए, पूरी उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ मांगने की गोया आदत डाली जाए, उसकी बरकत ये होगी कि आपकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। और उसके अलावा हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी और सुन्नत व नफलों से फारिग होकर तस्बीह फातिमी यानी 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, और सोते वक्त भी गोया कुल 6 मरतबा, 5 नमाजों के बाद 5 मरतबा, और सोते वक्त सोने का जब इरादा करो तो सोने के जो आदाब हैं, बावजू सोना चाहिए, वज़ू नहीं है तो वज़ू कर लो, बिस्तर पर जब आओ तो लेट मत जाओ, पहले बैठ कर ये तस्बीह फातिमी पढ़ लो, इसकी बड़ी फजीलत है। और औरतों के लिए तो ख़ास तौर पर घर के कामकाज की वजह से जो थकावट आती है इसके पढ़ने से वो भी दूर हो जाएगी। और हज़रत फातिमा जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाई थी, गोया उनके तरीक़े पर आप चलेगी तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में उनके साथ रखेंगे। तो बहरहाल इसको सोते वक्त ये पढ़ो लेटने से पहले बैठकर, और फिर दूसरा काम ये करो सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल पढ़ कर के दोनों हथेलियों के ऊपर दम करके वो हथेलियाँ सर पर, चेहरे पर, जिस्म के अगले पिछले हिस्से पर फिरा दो, तो ये आदमी रात भर अल्लाह की हिफाजत में रहता है। उसके बाद लेट जाओ, लेटने का जो सुन्नत तरीक़ा है, दाई करवट पर दाएँ रुखसार के नीचे दाया हाथ रख कर सोते वक्त की दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, या और जो दुआएं हैं वो पढ़ी, तो गोया सुन्नत के मुताबिक अगर आप लेटेंगी तो आपका ये सोना सुन्नत के मुताबिक होने की वजह से इबादत बन जाएगा। उठो तो उठते वक्त की दुआ पढ़ो, गोया अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, और उसके अलावा भी जितनी दुआएँ हैं, बैतुल खला के लिए जब निकलो तो पहले जो है बैतुल खला में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिका मिनल खुबूसि वल खबाइस, फिर बैतुल खला में जाओ, जाने का भी तरीका ये कि पहले उल्टा पाँव फिर सीधा पाँव, फारिग होने के बाद जब बाहर आओ तो पहले सीधा पाँव निकालो फिर उल्टा निकालो, बाहर आकर दुआ पढ़ो, गुफरान का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी अल अज़ाब वा अफ़ानी, गोया हर काम खाना पीना सोना उठना बैठना उस मौके के जो आदाब हैं जो दुआएं हैं उनकी अगर आप पाबंदी करेगी तो उसका नतीजा ये होगा कि आपके ये सारे काम जो है ना सुन्नत के मुताबिक हो करके इबादत बन जाएंगे। इसका अहतमाम करना और बचने की चीज़ों में जैसा कि अभी आपने बैत में कहा हर गुनाह से अपने आप को बचाना है, ख़ास तौर पर एक तो जो है ना अपनी आँख की हिफाजत करो, ये टीवी है या तस्वीरें हैं या आजकल मोबाइल का ज़माना है उसके अंदर भाई ऐसी चीज़ें नामहरम मर्दों को देखती हैं, इससे अपने आप को बचाओ और अपनी ज़बान की हिफाजत करो। जब आम तौर पर हम दूसरे के साथ जब बैठेंगे किसी की गीबत होगी किसी का ठट्ठा होगा किसी की जो है बुराई करेंगे, इसलिए ये सब गुनाह के काम हैं। काय को ये वर्दिशबाजी, अगर अल्लाह ने वक्त दिया है तो अल्लाह का नाम लो, कुरान पढ़ो, किताब पढ़ो, कुछ सीखो और अपनी औलाद की तरबियत करो और जो है किसी पर तोहमत लगाने से अपने आप को दूर रखो, अपनी हिफाजत करो, किसी के मुतालिक बदगुमानी मत करो। तो ये और अपने घर से बाहर ना निकलो बिला ज़रूरत। कुरान में अल्लाह तबरक तआला ने जो है हुक्म दिया है वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में जमी रहो। आम तौर पर आदमी घर से बाहर निकलता है तो किसी न किसी गुनाह में मुब्तला हो जाता है, इसलिए अपने घर में रहते हुए अपनी औलाद जो है चाहे लड़के लड़कियां छोटी जो औलाद उनकी तरबियत करो, घर की बहुओं की और घर की लड़कियों की वह उनकी निगरानी करो, सबके पास नमाज का वक्त आवे तो नमाज का अहतमाम कराओ, रोज़ाना सुबह को उनके पास कुरान की तिलावत का अहतमाम कराओ, ख़ुद भी कुरान की तिलावत करो, तस्बीहात का अहतमाम करो, रोज़ाना कुछ दिन तालीम होनी चाहिए फ़ज़ाइल वग़ैरह की, साथ ही साथ हफ्ते में एक दिन जो है मसाइल की तालीम जिसमें नमाज का तरीक़ा कि नमाज किस तरह सुन्नत के मुताबिक पढ़ी जाती है, फिर एक दिन रोज़ाना कुरान से हफ्ते में एक दिन कुरान सीखने का रखा जाए कि कुरान सही किस तरह पढ़ना है। तो मतलब यह है कि दीनी किताबें घर में होनी चाहिए, आपको जो भी ज़बान आती हो गुजराती अंग्रेज़ी उर्दू उसकी किताबें रखो और ख़ुद भी पढ़ो, घर के बच्चों को सुनाओ और उसके मुताबिक उनकी तरबियत करो तो इंशाल्लाह घर में बरकत होगी और ये जो बैत हुए हैं उसका फ़ायदा आपको हासिल होगा। अल्लाह तबरक तआला आपका ये बैत होना कबूल फरमावे, सिलसिले की बरकतों से नवाजे। दुआ कर लीजिए सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिअदद मा तुहिब्बु व तरदा रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तरदा मिनल क़ौलि वल अमलि वल फ़िलि वन नियति वल हुदा। अल्लाह तेरी ये बंदियाँ जिन्होंने बैत होकर अपने आप को तेरे नेक बंदों के सिलसिले से जोड़ा है इनके इस बैत होने को बे इंतहा कबूल फरमा और तेरी खुशनुदी और रजामंदी का ज़रिया बना, इनको तेरी मर्जियात पर चला कर नामर्जियात से हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और आपके तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में जारी करने और अपनाने की तौफीक और सआदत अता फरमा और ऐ अल्लाह सिलसिले के तमाम बुज़ुर्गों से हकीकी निस्बत और ताल्लुक़ अता फरमा, दुनिया में उनके नक्शे कदम पर चला कर आखिरत में उनके साथ हमारा हश्र फरमा। अपने अपने वक्त पर अल्लाह हमें ईमान के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमा। ये तमाम बहनें जो आई हुई हैं उनको, उनके घर के तमाम मर्दों, उनके औलादों, उनके भाइयों, उनके बहनों, उन घराने के तमाम छोटों बड़ों सबको अल्लाह सेहत कुव्वत आफियत सलामती दुनिया आखिरत की भलाइयों से माला माल फरमा, इनकी तमाम ज़रूरतों की अपने ख़जाने गैब से किफ़ालत फरमा, इनके औलादों को इल्म अमल सलाह तकवा की दौलत से आरास्ता फरमा कर माँ बाप की आँखों की ठंडक और उनके दिल का सुरूर बना, इनकी रोज़ियों में बरकत और वसत अता फरमा, हर किस्म के फितनों से इनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह इनकी बेहतरीन तरबियत फरमा, सबकी नेक और जायज़ मुरादें पूरी फरमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई मांगी हम सबको अता फरमा और जिन शुरू और बुराइयों से पना चाहिए उससे हिफाजत फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.